भावना बत्तीसी। श्रुत परंपरा में आचार्य अमित गति द्वारा विरचित भावना द्वात्रिंशती का अपर नाम भावना बत्तीसी नामक यह स्त्रोत जैन जगत में जन जन के द्वारा प्रतिदिन सामायिक के रूप में पाठ किया जाता है। आचार्य अमित गति की अध्यात्म रस से गर्भित इस कृति का हिंदी रूपांतरण आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी युगल द्वारा किया गया है। इस स्तोत्र में कुल 32 पद्यों के द्वारा इस संसार के समस्त हेय पदार्थों का त्याग व परम उपादेय तत्व ऐसी अपनी आत्मा का ध्यान करने की बात कही गई है। इस स्तोत्र में साम्य भाव की साधना का प्रयोगात्मक प्रयास मुखरित होता है। इसी प्रयास के साक्षी रूप में इन 32 श्लोकों के आधार से 32 चित्र तैयार किए गए हैं। इस कार्य को चित्र रूप देने में जो कार्य चित्रकार श्री अरविंदा समानता द्वारा किया गया है, उसके लिए संस्था उनकी आभारी है तथा इस कार्य में कार्यरत गुरु कहान कला संग्रहालय सोनगढ़ की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करती है। प्रस्तुत ऑडियो में मधुर स्वर व संगीत दे रहे हैं डॉक्टर गौरव जैन सोगानी व श्रीमती दीप शिखा जी सोगानी। श्लोकार्थ में पार्श्व स्वर दे रहे हैं पंडित अनुभव शास्त्री खनियाधाना एवं संयोजन कर रहे हैं पंडित राहुल शास्त्री मुंबई। स्वचिंतन के साथ सभी जीव भावना बत्तीसी के रहस्य को समझकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, यही भावना सह प्रस्तुत है श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई द्वारा प्रायोजित भावना बत्तीसी सामायिक पाठ। श्लोक एक। हे भगवान, मेरे मन में सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव हो, गुणवान व्यक्तियों के प्रति प्रसन्नता का, दुखी जीवों के प्रति करुणा का और विपरीत बुद्धि वाले, वस्तु स्वभाव को नहीं मानने वाले दुर्जनों के प्रति मध्यस्थता अर्थात समता का भाव सतत बना रहे। श्लोक दो। जैसे तलवार म्यान से पूर्णतया पृथक है, वैसे ही हे भगवान, मुझ में भी वह अनंत सामर्थ्य अर्थात भेद विज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो, जिसके द्वारा मैं अपने अनंत वैभव संपन्न आत्मा को इस शरीर से श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप में पूर्णतया पृथक कर सकूं।
So सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो।
श्लोक 3। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साम्य भाव प्रकट हो जिससे मुझे न सुख में न दुख में न शत्रु में न मित्र में न कांच में न सुवर्ण में न वन में न बगीचे में न महल में न कुटिया में इत्यादि समस्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में ना तो ममत्व हो और ना ही खेद खिन्नता हो। श्लोक 4। हे प्रभु, आपने आत्मस्थिरता के जिस सुंदरतम मार्ग पर चलकर मोह मान विषय वासना आदि विकारों को जीता है अर्थात नष्ट किया है, वही सुंदर मार्ग मेरा भी अनुशीलन मार्ग बने। मैं भी उसी मार्ग पर चलकर स्वरूप स्थिर रहूं।
केंद्रीय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो।
श्लोक 5। हे प्रभो, पूर्व में मैंने अज्ञान कषाय प्रमाद आदि के वशीभूत होकर एक इंद्रिय आदि प्राणियों की हिंसा की है, किंतु अब मैं विशुद्ध भाव से इसका प्रायश्चित करता हूं। पुनः मैं ऐसा दुष्कृत्य नहीं करूंगा। पूर्वकृत मेरा यह दुष्कृत्य निष्फल हो जाए अर्थात मेरे शुद्ध भावों का निमित्त पाकर पूर्वबद्ध कर्म बिना फल दिए ही समाप्त हो जाए। श्लोक 6। हे जिनेन्द्र देव, मैं जानता हूं मैंने कषायों के वशीभूत हो अनेक प्रकार से मोक्ष मार्ग के विरुद्ध प्रवृत्ति की है, खोटे मार्ग पर गमन किया है, किंतु अब मुझे सच्चे मार्ग का ज्ञान हो गया है, अतः मेरी वह सब कलुषता मेरे इन सद्भावों अर्थात सम्यक परिणमन से नाश को प्राप्त हो जाए।
चतुर वेद विश्वेक्षत करता त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता शांत।
श्लोक 7। हे प्रभु, जैसे चतुर वैद्य अपनी चतुराई से विष को शांत कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपने पापों को शांत करने के लिए प्रारंभ से लेकर अंत पर्यंत अपने सभी दुष्कृत्यों की निंदा आलोचना करता हूं। श्लोक 8। मैंने सत्य अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने में भी अपने मन को मलिन रखा तथा व्रतों से विपरीत प्रवृत्ति करके शीलमय आचरण अर्थात सदाचार का भी लोप कर डाला अर्थात स्वच्छंद प्रवर्तन करने लगा।
वासना की सरता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया।
श्लोक 9। कभी वासना अर्थात इच्छा रूपी नदी का गहरा जल मुझ पर ऐसा चढ़ा कि मैं अपनी सुध बुध ही खो बैठा। पंचेंद्रिय विषय भोगों रूपी शराब को बारंबार पीने से मुझ में पागलपन आ गया। मैं हित अहित का विवेक करने में भी असमर्थ हो गया हूं। श्लोक 10। हे भगवान, मैंने सदा छल और माया आदि कषायों के वशीभूत हो असत्य अर्थात वस्तु स्वभाव के विरुद्ध आचरण किया है। मेरे मन में अन्य की निंदा करने के, चुगली करने के, अन्य को गाली देने आदि के जो भी भाव उत्पन्न हुए, बिना कुछ विचारे मैंने तदनुसार मुंह से भी उन्हें उगल दिया अर्थात वचनों से भी वैसा ही व्यवहार किया है।
निर्भिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश ही हमें निर्मल ज्ञान बहे।
श्लोक 11। हे स्वामी, अब मात्र यही चाह है कि मेरा मन अभिमान रहित पवित्र हो जाए, उसमें सदा सत्य का वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ही ध्यान चलता रहे और निर्मल जल से परिपूर्ण नदी के समान मेरे हृदय में भी सदा निर्मल ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रहे। श्लोक 12। परम पूज्य मुनिराज, चक्रवर्ती इंद्र आदि के मन में भी जिस अनंत वैभव संपन्न परम देव अर्थात निज शुद्धात्मा का ध्यान रहता है, वेद पुराण आदि चार अनियोगमयी समग्र जिनवाणी जिसका सदा यशोगान करती है, वह परम देव निज शुद्धात्मा मेरे हृदय में भी सदा विद्यमान रहे।
दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे।
श्लोक 13। जो दर्शन ज्ञान स्वभावी है, जिसने सभी विषय विकारों अर्थात विकृतियों को नष्ट कर दिया है, जो उत्कृष्ट ध्यान में ही उपलब्ध होता है, वह परमात्मा परम देव मेरे मन में निवास करे। श्लोक 14। जो संसार के सभी संतापों को नष्ट कर देता है, जिसका ज्ञान समस्त विश्व को जानने वाला है, योगी जन जिसे ध्यान द्वारा उपलब्ध करते हैं, वह महान देव मेरे मन में स्थित रहे।
जन्म मरण से परम अतीत निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप।
श्लोक 15। जो मुक्ति के मार्ग अर्थात परम सुखी होने के उपाय को बताता है, जन्म मरण से पूर्णतया रहित, समस्त कर्म कलंक से रहित और तीन काल तीन लोकवर्ती संपूर्ण पदार्थों को देखने वाला है, वह देव मेरे मन के निकट रहे अर्थात मेरा मन सदा उसमें ही स्थिर रहे। श्लोक 16। समस्त विश्व के प्राणी राग द्वेष के अधीन हैं, ऐसे वे राग और द्वेष जिसमें नहीं है, तथा जो शुद्ध इंद्रियातीत और ज्ञान स्वरूपी है, वह परम देव मेरे हृदय में निवास करे।
देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित्र स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र।
श्लोक 17। जो संपूर्ण विश्व को देख रहा है, कर्म कलंक से पूर्णतया रहित है, विचित्र अर्थात आश्चर्यकारी अद्भुत स्वभाव वाला है, स्वच्छ है, विशिष्ट निर्मल है, समस्त विकारों से पूर्णतया रहित है, वह देव मेरे मन को भी पवित्र करे। श्लोक 18। कर्म कलंक जिसको छूता नहीं है, यहां तक कि दिव्य प्रकाश भी जिसका स्पर्श नहीं कर सकता है, तथा जो पर्याय मात्र से अप्रभावित है, जिसने मोह रूपी अंधकार का पूर्णतया भेदन कर दिया है, ऐसा वह नित्य निरंजन देव ही मुझे परम शरण भूत है।
जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी परम शरण मुझको वह आप।
श्लोक 19। जिसकी केवल ज्ञानमयी दिव्य ज्योति के समक्ष सूर्य का प्रकाश भी तेजहीन दिखाई देता है, जो स्वयं ज्ञानमय है, स्वपर प्रकाशक है, वह देव ही मुझे परम शरण भूत है। श्लोक 20। जिसके ज्ञान रूपी दर्पण में सभी पदार्थ अत्यंत स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं, जो आदि अंत से रहित शाश्वत है, शांत है, शिव अर्थात कल्याण स्वरूप है, वह देव ही मुझे परम शरण भूत है।
जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयमेव भय विषाद चिंता सब जिसके परम शरण मुझको वह दे।
श्लोक 21। जैसे अग्नि सहज ही वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार जिसके भय विषाद चिंता आदि सभी विकार स्वयं ही नष्ट हो गए हैं, वह देव ही मुझे परम शरण भूत है। श्लोक 22। तृण अर्थात घास का आसन हो अथवा चौकी का, शिला का आसन हो अथवा पर्वत की चोटी का, ये सभी आसन आत्मा में समाधि अर्थात स्थिरता के आसन नहीं है। इसी प्रकार संस्तर अर्थात संतारा, पूजा प्रतिष्ठा, संघ का सम्मेलन अथवा योग्य संघ का समागम प्राप्त हो जाना आत्मस्थिरता के साधन नहीं है।
इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हे सभी है विषय वासना उपादेय निर्मल आतम।
श्लोक 23। प्रिय पदार्थों के बिछुड़ जाने और अप्रिय पदार्थों का संयोग हो जाने पर संसारी प्राणी दुख शोक आदि करता है, परंतु वास्तव में तो विश्व के समस्त पदार्थ के प्रति आसक्ति का भाव ही छोड़ने योग्य है। इस संपूर्ण विश्व में एकमात्र अपना निर्मल आत्मा ही उपादेय है, आश्रय लेने योग्य है। श्लोक 24। बाह्य जगत अर्थात जगत में रहने वाले समस्त जीव एवं सारे पर पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं लगते, मैं भी इन जीवों और पर पदार्थों का कुछ भी नहीं लगता, इनका मुझसे और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस सत्य तथ्य को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करके मैं संपूर्ण पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर मुक्ति के लिए सदा अपने में ही स्थिर होता हूं।
अपनी निधि तो अपने वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ।
श्लोक 25। अपना संपूर्ण वैभव तो अपने में ही है, बाह्य पदार्थों में उसे पाने का प्रयास करना निरर्थक है। जग के इन पर पदार्थों को सुखमय तथा सुख के कारण मानना तो मृग मरीचिका के समान भ्रम है, अतः इनके लिए किया गया पुरुषार्थ भी मिथ्या है।
श्लोक
26। आत्मा अक्षय अर्थात अविनाशी, शाश्वत अर्थात अनादि अनंत स्थायी, निर्मल और ज्ञान स्वभावी है। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सभी इससे भिन्न है, पर है, कर्माधीन है और नाशवान है।
तन से जिसका एक नहीं हो, सुतत्या मित्रों से कैसे चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे।
श्लोक 27। जिसका शरीर के साथ भी एकत्व नहीं है, उस आत्मा का एकत्व पुत्र, पत्नी, मित्र आदि के साथ कैसे हो सकता है? जैसे शरीर से चमड़ी पृथक हो जाने पर शरीर में रोम समूह कैसे रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। श्लोक 28। जो जीव जड़ शरीर आदि पर पदार्थों के साथ संयोग करता है, उन्हें अपना मानता है, वह अनंत दुख प्राप्त करता है। मोक्ष रूपी महल को प्राप्त करने का उपाय तो जड़ शरीर और चेतन आत्मा के पूर्णतया पृथक पृथक होने रूप अत्यंत सीधा, सरल और सुगम है।
जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा फिर लीन उसी में हो।
श्लोक 29। हे आत्मन, यदि सुखी होना चाहते हो तो संसार सागर में गिराने वाले संपूर्ण विकल्प समूहों को छोड़कर समस्त संकल्प विकल्पों से रहित निर्विकल्प, संसार के जंजाल से रहित निर्द्वंद आत्मा में पुनः पुनः स्थिर हो जाओ। श्लोक 30। जीव ने जो भी शुभ या अशुभ कर्म स्वयं किए हैं, वे नियम से अपना फल देते हैं। कार्य स्वयं करे और फल अन्य के अधीन हो तो अपने द्वारा किए गए कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। संसार में पुरुषार्थ करने का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा।
Thank you. अपने कर्म सेवाए जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि।
श्लोक 31। जीव को अपने कर्मों के सिवाय अन्य कोई भी फल नहीं देता है, इसलिए कोई दूसरा मुझे कुछ दे सकता है यह विचार छोड़कर प्रमादी बुद्धि नष्ट कर आत्म कल्याणकारी कार्यों में जागृत रहते हुए आत्मा में स्थिर हो जाओ। श्लोक 32। अमित गति आचार्य कहते हैं कि आश्चर्यकारी अनंत वैभव संपन्न वह महान देव निर्मल, सत्य, शिव, सुंदर, शाश्वत है, जो इसका सदैव अपने में ही अनुभव करते हैं वे पवित्रतम पद निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो इन 32 श्लोकों में वर्णित स्वरूप का अनुभव करते हैं वे पवित्रतम पद निर्वाण को प्राप्त करते हैं।
जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्या